सालार 2 घंटे के बाद स्टडी से निकला था और इस वक्त भी लाउंज में फोन कान से लगाए सुर्ख आंखों और नाक के साथ फोन पर वसीम से गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो उसके पास से गुजरकर बेडरूम में गया था और उसे यकीन था इमामा ने उसे एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा था। वो सोने के लिए बेड पर लेटने के बाद भी बहुत देर तक इस नई डेवलपमेंट के बारे में सोचता रहा था। पता नहीं ये ठीक हो रहा था या गलत। वो इमामा का कोई दूसरा भाई होता तो वो कभी इमामा से उसका राब्ता ना करवाता, लेकिन वसीम के हवाले से वो तहफुजात रखने के बावजूद किसी हद तक नरम गोशा रखने पर मजबूर था। अगर उसकी फैमिली का एक फर्द भी उसके साथ कुछ राबता रखता तो वो जानता था कि इमामा जहनी तौर पर बहुत बेहतर महसूस करेगी। अपने पीछे अपनी फैमिली की अदम मौजूदगी का जो एहसास कमतरी वो लिए हुए थी, वो इतने महीनों के बाद कम अज कम सालार से ढका छुपा नहीं था। वसीम अगले दिन 2 बजे आया था और 2 बजे तक इमामा को घर में किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। वो मुलाजमा के साथ खाना तैयार करते हुए उससे अपनी फैमिली की बातों में मसरूफ थी। इस ताजा तरीन अपडेट के साथ जो उसे रात को वसीम से मिली थी, उसने पहली बार उसे मुलाजमा के साथ इतने जोशो जज्बे से बात करते हुए सुना था और वो हैरान था। हैरानगी इस कैफियत को इतने मुअस्सर तरीके से बयान नहीं कर पाई। वसीम का इस्तकबाल उसने सालार से भी पहले दरवाजे पर किया था। बहन और भाई के दरमियान एक जज्बाती सीन हुआ था जिसमें सालार ने दोनों से तसल्ली के चंद अल्फाज कहकर कुछ किरदार अदा किया था। इसके बाद 6:30 बजे वसीम की मौजूदगी तक वो एक खामोश तमाशाई का रोल अदा करता रहा था। वो खाने की टेबल पर मौजूद जरूर था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि उसका वहां होना या ना होना बराबर था। इमामा को भाई के अलावा कोई और नजर आ रहा था, ना किसी और का होश था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर मौजूद हर डिश अपने हाथों से वसीम को खिलाए। इतने महीनों में ये पहला मौका था कि इमामा ने खाने की टेबल पर उसे कुछ सर्व नहीं किया था। वो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन ये भी पहला मौका था कि वहां उसके होते हुए भी वसीम और उसके दरमियान सिर्फ चंद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ था। फिर वो और इमामा आपस में गुफ्तगू करते रहे थे। इमामा, ये वसीम नामा बंद हो सकता है अब? वो तीसरा दिन था जब डिनर पर बिलाखिर सालार की कुव्वत बर्दाश्त ने जवाब दे दिया था। वो 3 दिनों से मुसलसल नाश्ते, डिनर और रात सोने से पहले सिर्फ वसीम की बातें बार बार सुन रहा था। इमामा बुरी तरह वसीम पर फिदा थी। ये सालार को अंदाजा था कि वो वसीम से मिलने के बाद खुश होगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी इस इंतहा को पहुंचेगी कि खुद उसे मसला होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। मतलब ये कि दुनिया में वसीम के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनकी तुम्हें परवाह करनी चाहिए, सालार ने उसे इनडायरेक्ट अंदाज में कहा। तुम्हें मेरा वसीम के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता? उसने यकदम जैसे कोई अंदाजा लगाया और उसके लहजे में ऐसी बेयकीनी थी कि वो हां नहीं कह सका। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? वैसे ही कह रहा हूं मैं तुम्हें। वो बेसाख्ता बात बदल गया। हां, मैं भी सोच रही थी तुम ये कैसे कह सकते हो, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो यकदम मुतमईन हुई। सालार उससे ये नहीं कह सका कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है नहीं, कभी था। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था वो। सालार खाना खाते खाते रुका। मेरे बारे में क्या? सब कुछ, वो उसी रवानी से बोली। सालार के पेट में गिरें पड़ी। सब कुछ क्या मतलब? जो कुछ भी तुम करते थे। सालार की भूख उड़ी थी। मसलन? वो पता नहीं अपने किन खदशात को खत्म करना चाहता था। वो सोच में पड़ी। जैसे तुम जिससे ड्रग्स लेते थे उनके बारे में। वो जब तुम लाहौर में अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया गए थे तो तब भी वो बात मुकम्मल नहीं कर सके। पानी पीते हुए सालार को अच्छू लगा था। तुम्हें उसने ये भी बताया है कि मैं सालार खुद भी अपना सवाल पूरा नहीं दोहरा सका। जब भी जाते थे तो बताता था। सालार के मुंह से बेख्तियार वसीम के लिए जेरे लब गाली निकली थी और इमामा ने उसके होंठों की हरकत को पढ़ा था। वो बुरी तरह अपसेट हुई। तुमने उसे गाली दी है? उसने जैसे शॉक्ड होकर सालार से कहा। हाँ, वो सामने होता तो मैं उसकी दो चार हड्डियां भी तोड़ देता। वो अपनी बहन से ये बातें जाकर करता था और मेरी बातें? आई कांट इमेजिन, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो इसी बुरी तरह खफा हुआ था। सब कुछ की दो झलकियों ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। तुम मेरे भाई को दोबारा गाली मत देना। इमामा का मूड भी ऑफ हो गया था। वो खाने के बर्तन समेटने लगी थी। सालार जवाबन कुछ कहने की बजाय बेहद खफगी से खाने की मेज से उठ गया था। वो तकरीबन दो घंटे के बाद बेडरूम में सोने के लिए आई थी। वो इस वक्त मामूल के मुताबिक अपनी ईमेल्स चेक करने में मसरूफ था। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर कंबल खुद पर खींचते हुए लेट गई थी। सालार ने ईमेल चेक करते गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसे इसी रद्दे अमल की तवक्को थी। वो रोज सोने से पहले कोई किताब या नावल पढ़ती थी और किताब पढ़ने के दौरान उससे बातें भी करती थी। ये खामोशी उस दिन होती थी जिस दिन वो उससे खफा होती थी। उसने अपना बेड साइड टेबल लैंप भी ऑफ कर लिया था। मैंने वसीम को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इस तरह नाराज होकर बैठो। सालार ने मुफाहमत की कोशिशों का आगाज किया। वो इसी तरह करवट दूसरी तरफ लिए बेहिसो हरकत लेटी रही। इमामा, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सालार ने कंबल खींचा था। तुम अपने छोटे भाई अम्मार को वही गाली देकर दिखाओ। उसके तीसरी बार कंबल खींचने पर वो बेहद खफगी से उसकी तरफ करवट लेते हुए बोली। सालार ने बिला तवक्कुफ वही गाली अम्मार को दी। चंद लम्हों के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। अगर दुनिया में ढटाई की कोई मेराज थी तो वो था। मैं पापा को बताऊंगी, इमामा ने बिला आखिर सुर्ख चेहरे और भराई हुई आवाज में कहा। तुमने कहा था अम्मार को गाली देने को? वो वैसे ही इत्मीनान से बोला था। वैसे तुम्हारे भाई को इससे ज्यादा खराब गालियां मैं उसके मुंह पर दे चुका हूं और उसने कभी माइंड नहीं किया। और अगर तुम चाहो तो अगली बार जब वो यहां आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो जैसे करंट खाकर उठकर बैठी थी। तुम वसीम को यहां मेरे सामने गालियां दोगे? उसे बेहद रंज हुआ था। जो कुछ उसने किया है, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे गालियां ही देता और इससे ज्यादा बुरी। सालार ने लगी लपटी के बगैर कहा। लेकिन चलो, आई एम सॉरी। वो इस बार फिर उसकी शक्ल देखकर रह गई थी। सिकंदर उस्मान ठीक कहते थे, उनकी वो औलाद समझ में ना आने वाली चीज थी। लेकिन पापा वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, मेरी तो कोई बात नहीं टालता। उसने एक बार सिकंदर के पूछने पर कि वो उसका ख्याल रखता था के जवाब में सालार की तारीफ की थी। इमामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, ये दुनिया में अल्लाह ने सिर्फ एक पीस पैदा किया था। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह उसके साथ गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूं। अब बाकी की जिंदगी तुम्हें गुजारनी है उसके साथ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें कभी पता नहीं चल सकता। उसने जो करना होता है वो करना होता है, चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए। उसे समझा समझा कर और कभी इस खुशफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्जी नहीं करेगा। सालार सर झुकाए मुस्कुराकर बाप की बातें सुनता रहा था और वो कुछ उलझी नजरों से बारी बारी उसे और सिकंदर को देखती रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा तुम्हें कि सालार चीज क्या है। ये पानी में आग लगाने वाली गुफ्तगू का माहिर है। सालार ने किसी एक बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। सिकंदर के पास से वापसी के बाद इमामा ने सालार से कहा, तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब है पापा पर, तुम्हें कोई वजाहत करनी चाहिए थी। कैसी वजाहत, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें उनकी बातें गौर से सुननी चाहिए थी। वो तब भी उसका मुंह देख कर रह गई थी और वो अब भी उसका मुंह देख रही थी। आई एम सॉरी, वो फिर कह रहा था, तुम शर्मिंदा तो नहीं हो? उसने उसे शर्मिंदा करने की एक आखिरी कोशिश की। हाँ वो तो मैं नहीं हूं, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरा सॉरी कहना अच्छा लगता है इसलिए आई एम सॉरी, उसने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय बेड साइड टेबल पर पड़ा पानी का पूरा ग्लास पिया और दोबारा कंबल खींचकर लेट गई। पानी और ला दूं? वो उसे छेड़ रहा था। इमामा ने पलटकर नहीं देखा। वो नींद में सेलफोन की आवाज पर हड़बड़ाई थी। वो सालार का सेलफोन था। हेलो, सालार ने नींद में करवट लेते हुए साइड टेबल से फोन उठाकर कॉल रिसीव की। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। हाँ बात कर रहा हूं, उसने सालार को कहते सुना। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो यकदम बिस्तर से निकल गया था। इमामा ने आंखें खोलते हुए नीम तारीकी में उसे देखने की कोशिश की। वो लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ही कमरे से निकलकर लाउंज में चला गया था। वो कुछ हैरान हुई थी, वो किसका फोन हो सकता था जिसके लिए वो रात के इस पहर यूं उठकर कमरे से गया था। आंखें बंद किए वो कुछ देर उसकी वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आया तो वो कुछ बेचैन उठकर कमरे से लाउंज में आई थी। वो लाउंज के सोफे पर बैठा फोन पर बातें कर रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए वो फोन पर बात करते करते रुका। एक जीन्स और शर्ट पैक कर दो मेरी, मुझे अभी इस्लामाबाद के लिए निकलना है। क्यों, खैरियत तो है? वो परेशान हुई थी। स्कूल में आग लग गई है, उसकी नींद पलक झपकते में गायब हुई थी। सालार अब दोबारा फोन पर बात कर रहा था, बेहद तशवीश के आलम में। कमरे में वापस आकर उसने उसका बैग तैयार किया। वो तब तक कमरे में वापस आ चुका था। आग कैसे लगी, ये तो वहां जाकर पता चलेगा। वो बेहद उजलत में अपने लिए निकाले हुए कपड़े लेता हुआ वॉशरूम में चला गया। वो बैठी रही, वो उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकती थी। शादी के शुरू के चंद महीने छोड़कर अब ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्हें बुरी तरह तकलीफ पहुंचा रहा था। 10 मिनट में वो तैयार होकर निकल गया, लेकिन वो दोबारा बिस्तर में नहीं जा सकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी परेशानी में दुआएं करते हुए काटी थी। सालार से उसकी एक दो बार चंद मिनट के लिए बात हुई, लेकिन वो फोन पर मुसलसल मसरूफ था। इमामा ने उसे डिस्टर्ब करने से गुरेज किया। उसके गांव पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। वजह फायर ब्रिगेड का बरवक्त दस्तयाब ना होना था, और आग का इतने घंटों के बाद भी ना बुझ पाने का मतलब क्या था वो इमामा अच्छी तरह से समझ सकती थी। वो पूरा दिन जले पांव की बिल्ली की तरह घर में फिरती रहती थी। सालार ने बिलाखिर उसे आग पर काबू पाने की इतला दे दी थी, मगर साथ ये भी कहा था कि वो उसे रात को कॉल करेगा, और वो इस रात इस्लामाबाद ही रहने वाला था। उस दिन वो सारा दिन कुछ खा नहीं सकी थी। इमारत को कितना नुकसान पहुंचा था ये उसे नहीं पता था, लेकिन कई घंटे लगी रहने वाली आग क्या कुछ कर सकती थी उसका एहसास उसे था। सालार से बिलाखिर आधी रात के करीब उसकी बात हुई थी। वो आवाज से उसे इतना थका हुआ लग रहा था कि इमामा ने उससे ज्यादा देर बात करने की बजाय सोने का कहकर फोन बंद कर दिया, लेकिन वो खुद सारी रात सो नहीं सकी थी। आग इमारत में लगाई गई थी, वहां पुलिस को इब्तदाई तौर पर ऐसे शवाहिद मिले थे, और ये मामूली सी बात इमामा की नींद और हवास को बातिल करने के लिए काफी थी। वो सिर्फ सालार का स्कूल नहीं था, वो पूरा प्रोजेक्ट अब एक ट्रस्ट के तहत चल रहा था जिसके मेन ट्रस्टीज सालार की फैमिली थी, और इस प्रोजेक्ट को यकदम इस तरह का नुकसान कौन पहुंचा सकता था, यही वो सवाल था जो उसे रुला रहा था। सब कुछ जैसे फिर चंद हफ्ते पहली वाली स्टेज पर आ गया था। वो अगले दिन रात को घर पहुंचा था और उसके चेहरे पर थकन के अलावा दूसरा कोई तासुर नहीं था। वो अगर कुछ और देखना चाहती थी तो मायूस हुई थी। वो नॉर्मल था, उसे जैसे हौसला हुआ था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है वो कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, शायद बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी पड़े। खाने की टेबल पर उसके पूछने पर उसने इमामा को बताया था। बहुत नुकसान हुआ होगा, ये अहमकाना सवाल था, लेकिन इमामा हवास भागता थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था, स्कूल बंद हो गया। ये एक और अहमकाना सवाल। नहीं, गांव के चंद घर फौरी तौर पर खाली करवाए हैं और किराए पर लेकर स्कूल के मुक्त ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है। लकीली भी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो खाना खाते हुए बता रहा था। और पुलिस ने क्या कहा? इधर उधर के सवाल के बाद इमामा ने बिलाखिर वो सवाल किया जो उसे परेशान किए हुए था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, देखो क्या होता है, सालार ने गोलमोल बात की थी। उसने उसे ये नहीं बताया था कि दो दिन इस्लामाबाद में वो अपनी फैमिली के हर फर्द से इस केस के सस्पेक्ट्स यानी मुश्तबा अफराद में इमामा की फैमिली को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करता रहा था। वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इस प्रोजेक्ट को चलाने में बहुत से लोगों के अतियात इस्तेमाल हुए थे और इस नुकसान के मुतासरीन बहुत से थे। कई साल से आराम से चलने वाले इस स्कूल का कोई दुश्मन पहले कभी पैदा नहीं हुआ था और अब इमामा से ज्यादा वो खुद दुआ कर रहा था कि ये आग इत्तफाकी हादसा हो। मगर चंद घंटों में ही आग के स्केल और सूरत हाल से अंदाजा हो गया था कि वो प्लान शुदा आतिश जदगी थी और अगले चंद घंटों में कुछ और शवाहिद भी मिल गए थे। इमामा से ये सब शेयर करना हिमाकत थी। वो पिछले तजुर्बे के बाद इस तरह की किसी दूसरी परेशानी में कम अज कम उसे डालना नहीं चाहता था। अब क्या होगा? तीसरा अहमकाना सवाल। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बस। जवाब इतना ही सादा था। और फंड्स, वो कहां से आएंगे? ये पहला समझदाराना सवाल था। इंडोवमेंट फंड स्कूल का है, उसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है, वहां से रकम निकलवाऊंगा। वो इस्लामाबाद का प्लॉट बेच दूंगा, फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत कर ही लूंगा, इतना कि स्कूल की बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाए। प्लॉट्स क्यों? वो बुरी तरह बितकी थी। इमामा ने नोटिस नहीं किया था कि वो प्लॉट्स नहीं, प्लॉट कह रहा था। इससे फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी मुझे, बाद में ले लूंगा, अभी तो फौरी तौर पर इस मैस से निकलना है मुझे। तुम वो हक महर की रकम ले लो, 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाले गिफ्ट की रकम भी होगी और इतने ही मेरे अकाउंट में भी पहले से भी होंगे, 50-60 लाख तो ये हो जाएगा। और सालार ने उसकी बात काटी, मैं ये कभी नहीं करूंगा, कर्ज ले लो मुझसे, बाद में दे देना। नो, उसका अंदाज हतमी था। मेरे पास बेकार पड़े हैं सालार, तुम्हारे काम आएंगे तो। उसने फिर इमामा की बात काटी थी। आई सेड नो, मैंने कहा ना नहीं, उसने इस बार कुछ तुरशी से कहा था। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फर्क है? हां है, उसने इसी अंदाज में कहा था। वो हक महर और शादी पर गिफ्ट में मिलने वाली रकम है, मैं कैसे ले लूं तुमसे? मैं बेशर्म हो सकता हूं, बेगैरत नहीं हो सकता। अब तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। और सालार ने उसकी बात काटी, कौन जज्बाती हो रहा है? कम अज कम मैं तो नहीं हो रहा। वो उसे देख कर रह गई थी। मैं तुम्हें कर्ज दे रही हूं सालार। थैंक यू वेरी मच बट आई डोंट नीड, बहुत शुक्रिया मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कर्ज लेना होगा तो बड़े दोस्त हैं मेरे पास। दोस्तों से कर्ज लोगे, बीवी से नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं सालार, इमोशनली करो, फाइनेंशियली नहीं। वो उसे देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह कायल करे, और अगर मैं ये रकम डोनेट करना चाहूं तो उसे बिलाआखिर एक ख्याल आया, जरूर करो, इस मुल्क में बहुत से खैराती इदारे हैं, तुम्हारा पैसा है, चाहे आग लगा दो, लेकिन मैं या मेरा इदारा नहीं लेगा, उसने साफ लफ्जों और हतमी अंदाज में कहा। तुम मुझे कभी कुछ डोनेट करने नहीं दोगे? जरूर करना, लेकिन फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। वो टेबल से उठ गया था। वो बेहद अपसेट उसे ज्यादा देखती रही। उसके वो प्लॉट उसके घर की पहली दो ईंटें थी, और वो पहली दो ईंटें इस तरह जाने वाली थी। ये चीज उसके लिए तकलीफ दे थी। तकलीफ का बायस वो एहसास जुर्म भी था जो वो इस सारे मामले में अपनी फैमिली के इन्वॉल्व होने की वजह से महसूस कर रही थी। तकलीफ का बायस वो कहीं ना कहीं इस रकम से जैसे इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करना चाहती थी, जो उसकी फैमिली ने किया था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि सालार ने उसकी इस सोच को उससे पहले पढ़ लिया था। वो जानता था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। आने वाले दिनों में भी वो सालार को वो रकम लेने पर मजबूर करती रही, लेकिन वो एक बार भी ये जुर्रत नहीं कर सकी थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सालार से कुछ पूछती। वो दोनों जानते बूझते इस हसास इशू पर गुफ्तगू से इज्तनाब कर रहे थे, और ये इमामा के लिए एक नेमत मुतबर्रिका से कम नहीं था। जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। उसके सामने बैठा वसीम बड़ी संजीदगी से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब अबू कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने भी ऐसा कुछ ना किया हो, मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं सुना। वसीम ने हाशिम उबीन का भी दिफा करने की कोशिश की थी। इमामा कायल नहीं हुई, वो सालार के सामने अपनी फैमिली का दिफा करने की कोशिश कर सकती थी, वसीम के सामने नहीं। उसे यकीन था ये जो कुछ हुआ था इसमें उसके अपने बाप का ही हाथ था। अबू से कहना, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, सालार को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा, एक स्कूल ही जला है फिर बन जाएगा, उनसे कहना वो कुछ भी कर लें, हमें फर्क नहीं पड़ता। वसीम उसका चेहरा देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा, फिर उसने इमामा से मध्यम आवाज में कहा, मैं अबू से ये बात नहीं कह सकता, मैं बहुत बुजदिल हूं, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं। चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखकर रह गए। जब से वो दोबारा मिलना शुरू हुए थे, आज पहली बार वो ढके छुपे लफ्जों में उसे सराह रहा था या एतराफ कर रहा था, तुम्हारे जाने के बाद इतने सालों में बहुत दफा कमजोर पड़ा, मैं बहुत दफा शशोपंज का भी शिकार रहा और शको शुबा का भी, बहुत दफा दिल चाहता था जिंदगी के इस गुबार को मैं भी खत्म करने की कोशिश करूं जिसने मेरी बेनाई धुंधलाई हुई है, लेकिन मैं बहुत बुजदिल हूं, तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकता था। अब आ जाओ, इमामा को खुद एहसास नहीं हुआ उसने ये बात उससे क्यों कह दी, और कहनी चाहिए थी या नहीं। वसीम ने उससे नजरें नहीं मिलाई, फिर सर हिलाते हुए कहा, अब और भी ज्यादा मुश्किल है, जब अकेला था तो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सका था, अब तो बीवी और बच्चे हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं और सालार, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम एक बार कोशिश तो करो। इमामा भूल गई थी उसने वसीम को क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था और वो क्या डिस्कस करने बैठ गई थी। इंसान बहुत खुदगर्ज और बेशर्म होता है इमामा, ये जो जरूरत होती है ये सही और गलत की सब तमीज खत्म कर देती है। काश मैं जिंदगी में मजहब को पहली प्रायोरिटी बना सकता, मगर मजहब प्रायोरिटी नहीं है मेरी। वसीम ने गहरा सांस लिया था, जैसे कोई रंज था जिसने बगोला बनकर उसे अपनी लपेट में लिया था। मैं तुम्हारी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता मजहब के लिए, तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी है। तुम जानते बूझते जहन्नुम का इंतखाब कर रहे हो सिर्फ दुनिया के लिए, अपने बीवी बच्चों को भी इसी रास्ते पर ले जाओगे, क्योंकि तुम में सिर्फ जुर्रत नहीं है सच को सच और झूठ को झूठ कह देने की। वो अब भाई को चैलेंज कर रही थी। वो यकदम उठकर खड़ा हो गया, यूं जैसे बेकरार था। तुम मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डालना चाहती हो, आजमाइश से बचाना चाहती हूं। आजमाइश तो वो है जिसमें तुमने खुद को डाल रखा है। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली। मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहता था। वसीम मेरा फोन नहीं उठा रहा, इमामा ने उस रात खाने पर सालार से कहा था। सालार को वो बहुत परेशान लगी थी। हो सकता है मसरूफ हो, सालार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, वो नाराज है। इस बार सालार चौंका था। नाराज क्यों होगा? इमामा ने उसे अपनी और वसीम की गुफ्तगू सुना दी। सालार गहरा सांस लेकर रह गया था। तुम्हें जरूरत क्या थी उससे इस तरह की गुफ्तगू करने की? बालिग आदमी है वो, बिजनेस कर रहा है, बीवी बच्चों वाला है, उसे अच्छी तरह पता है उसने जिंदगी में क्या करना है और उसके लिए क्या सही है। तुम लोग आपस में मिलते रहना चाहते हो तो मजहब को डिस्कस किए बगैर मिलो, सालार ने उसे बड़ी संजीदगी के साथ समझाया। बात उसने शुरू की थी, वो ना करता तो मैं भी ना करती, इमामा ने जैसे अपना दिफा किया। और खुद बात शुरू करने के बाद अब वो तुम्हारी फोन कॉल नहीं ले रहा तो बेहतर है। अब तुम इंतजार करो सुकून से, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो कर लेगा वो तुम्हें कॉल, सालार कहकर दोबारा खाना खाने लगा। इमामा इसी तरह बैठी रही। अब क्या हुआ? सालार ने सलाद का एक टुकड़ा उठाते हुए उसकी खामोशी नोटिस की। मेरी ख्वाहिश है वो भी मुसलमान हो जाए, इस गुमराही की दलदल से निकल आए। सालार ने एक लम्हा रुककर उसे देखा, फिर बड़ी संजीदगी से उसे कहा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, ये उसकी जिंदगी है, उसका फैसला है, तुम अपनी ख्वाहिश उस पर इम्पोज नहीं कर सकती। इम्पोज तो कर भी नहीं रही मैं, वो प्लेट में चम्मच बेमकसद हिलाते हुए दिल गिरफ्तार हुई थी। कभी कभी दिल जाता है इंसान का वो चीजों को जादू की तरह ठीक करने की कोशिश करे। सालार ने उसकी दिल गिरफ्तगी महसूस की, फिर जैसे उसे दिलासा देने की कोशिश की, जिंदगी में जादू नहीं चलता, अक्ल चलती है या किस्मत। उसकी अक्ल काम करेगी और किस्मत में लिखा होगा तो वो अपने लिए कोई स्टैंड ले लेगा, वरना मैं या तुम कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उसे नरमी से समझाता रहा था। और तुम दोबारा कभी उससे इस मसले पर खुद बात नहीं करोगी, ना ही स्कूल के हवाले से किसी गिले शिकवे के लिए उसे बुलाओगी। मैं अपने मसलों को हैंडल कर सकता हूं और वसीम कुछ नहीं कर सकता, वो ये कहकर खाने की टेबल से उठ गया। इमामा इसी तरह खाली प्लेट लिए बैठी रही। पता नहीं जिंदगी में अचानक इतनी बेसकूनी कहां से आ गई थी। वो फेरी टेल जो चंद माह पहले सालार के साथ शुरू हुई थी और जो उसके पैरों को जमीन पर टिकने नहीं देती थी, अब वो परियों की कहानी क्यों नहीं रही थी? इसमें परेशानियों का जंगल कैसे उगाया था? या शायद ये उसके सितारे थे जो एक बार फिर गर्दिश में आए हुए थे। स्कूल की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वाकई बहुत नुकसान पहुंचा था, सब कुछ जैसे स्क्वायर वन पर आ गया था। ये सालार के लिए हालिया जिंदगी का पहला बड़ा जाती मालियाती नुकसान था। चंद घंटों में सब कुछ राख हो जाने का मतलब उसे जिंदगी में पहली बार समझ में आया था। और इस पर सबसे बदतरीन चीज ये थी कि इस सारे इशू में उसके ससुराल के मुलव्विस होने पर कम अज कम उसकी फैमिली में से किसी को शुबा नहीं था, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन था। गांव का कोई फर्द मुलव्विस होता तो पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद किसी ना किसी को जरूर पकड़ लेती, मगर इस आतिश जदगी में वहां के किसी शख्स की इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं हुई थी। और जितने प्रोफेशनल तरीके से एक ही वक्त में मुख्तलिफ केमिकल्स के इस्तेमाल से उस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में वो आग लगाई गई थी, वो किसी आम चोर उचक्के का काम नहीं था। अगर मकसद उसे नुकसान पहुंचाना था तो उसे बेहद नुकसान हुआ था। अगर मकसद उसे चोट पहुंचाना था तो ये पेट पर जरब लगाने जैसा था। वो दोहरा हुआ था मगर मुंह के बल नहीं गिरा था। उसे छोड़ दो सालार, वो दूसरे वीकेंड पर फिर इस्लामाबाद में था और तैयबा इस बार जैसे गड़गड़ा रही थी। वो इस सब से इस बार मजीद खायफ हो गई थी। तुम्हें शादी का शौक था, वो पूरा हो गया है, अब छोड़ दो उसे। आपको अंदाजा है कि आप मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाती हैं जब आप मुझसे इस तरह की बात करती हैं। सालार ने उनको बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया है? अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, उसने फिर मां की बात काटी थी। तुम अकल के अंधे हो सकते हो, हम नहीं। और कौन है दुश्मन तुम्हारा इमामा की फैमिली के सिवा? तैयबा बरहम हो गई थी। इस सब में इमामा का क्या कसूर है? यह सब उसकी वजह से हो रहा है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात? नहीं आती और ना ही आएगी। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं और आइंदा भी यही कहूंगा। मैं इमामा को नहीं छोड़ूंगा, कम अज कम इस वजह से तो नहीं कि उसकी फैमिली मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। आपको कोई और बात करनी है तो मैं बैठता हूं, इस इशू पर मुझे ना आज ना ही दोबारा बात करनी है। तैयबा कुछ बोल नहीं सकी थी। वो वही कुछ कह रहा था जो सिकंदर की जुबानी वो पहले से सुन चुकी थी, लेकिन उन्हें खुशफहमी थी कि वो इस बार किसी ना किसी तरह उसको इस बात पर तैयार कर सकें जिसके बारे में सिकंदर को कोई उम्मीद नहीं थी। सिकंदर इस वक्त वहां नहीं थे। वो आधा घंटा वहां बैठने के बाद वापस बेडरूम में आया तो इमामा टीवी देख रही थी। वो उसे गांव लेकर नहीं गया था, लेकिन इस्लामाबाद में वीकेंड के बाद अगले दो दिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस की वजह से साथ ही ले आया था। वो अपना लैपटॉप निकालकर कुछ काम करने लगा था जब उसे अजीब सा एहसास हुआ था। वो जिस चैनल पर थी वहां मुसलसल इश्तेहार रहे थे और वो सोफा पर बैठी उन्हें बेहद यकसुई से देख रही थी। वो आम तौर पर मुसलसल चैनल सर्फिंग में मसरूफ रहती थी। इश्तेहारात को देखना बेहद हैरानकुन था। सालार ने वक्तन फवक्तन तीन बार उसे और टीवी को देखा था। उसने 10 मिनट के दौरान उसे एक बार भी चाय का मग उठाते नहीं देखा था जो उसके सामने टेबल पर पड़ा था, जिसमें से अब भाप उठना बंद हो गई थी। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड से उठकर उसके पास सोफा पर आकर बैठ गया। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सालार ने उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल पकड़कर टीवी ऑफ कर दिया। तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी हैं क्या? वो चंद लम्हों के लिए साकत हो गई थी। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था। और अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मिनिस्टर जरूर था। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखते हुए झूठ बोलना बेकार था। उसने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, किचन में चाय बनाने गई थी। तुम और मम्मी लाउंज में बातें कर रहे थे, मैंने किचन में सुना सब कुछ। उसने सर झुकाए कहा। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि तैयबा के मुतालबे ने चंद लम्हों के लिए उसके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली थी। आखिरी चीज जो वो तसव्वुर कर सकती थी वो वही थी कि कोई सालार से उसे छोड़ने के लिए कह सकता था, और वो भी इतने साफ अल्फाज में, इतने हद तक अमेज अंदाज में। तुम जब यहां आते हो वो सब कुछ कहती हैं तुमसे। एक लंबी खामोशी के बाद उसने सालार से पूछा, जो उसे तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज ढूंढ रहा था। नहीं, हर बार नहीं कहती, कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर जाती हैं, उसने हमवार लहजे में कहा। मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊंगी, उसने यकदम कहा। लेकिन मैं तो आऊंगा और मेरे साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। अल्फाज सीधे थे मगर लहजा नहीं, उसने सालार का चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी। तुम अपनी मम्मी की साइड ले रहे हो। हाँ, जैसे मैंने उनके सामने तुम्हारी साइड ली। वो उसके जवाब पर चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। वो ठीक कह रहा था। खामोशी का एक और लंबा वक्फा आया था। फिर सालार ने कहा, जिंदगी में अगर कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान अलहदगी जैसी कोई चीज हुई तो इसकी वजह मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली नहीं बनेगी। कम अज कम ये जमानत मैं तुम्हें देता हूं। वो फिर भी खामोश रही थी। कुछ बोलो। क्या बोलूं, जब तुम खामोश होती हो तो बहुत डर लगता है मुझे। इमामा ने हैरानी से उसे देखा था। वो बेहद संजीदा था। मुझे लगता है तुम पता नहीं इस बात को कैसे इस्तेमाल करोगी मेरे खिलाफ। कभी, उसने जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तवक्कुफ से एक आखिरी लफ्ज का इजाफा किया। वो उसे देखती रही लेकिन खामोश रही। सालार ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम मेरी बीवी हो इमामा, वो मेरी माँ है। मैं तुम्हें शट अप कह सकता हूं, उन्हें नहीं कह सकता। वो एक माँ की तरह सोच रही हैं और माँ की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम माँ बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा। मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज को मैंने इग्नोर कर दिया उसे तुम सीरियसली लोगी तो ये हिमाकत होगी। वो उसे समझा रहा था। वो सुन रही थी। जब वो खामोश हुआ तो उसने मध्यम आवाज में कहा, मेरे लिए सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। जब से शादी हुई है यही कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं। सालार ने उसकी बात काट दी। शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद से की जाती है। अच्छे दिनों के साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी है, जैसा भी है, एक साथ ही है। अब अगर तुमको लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमसे शादी के बाद पहले मेरा प्राइज बॉन्ड निकलेगा, फिर मुझे कोई बोनस मिलेगा, फिर मेरी प्रमोशन होगी और फिर मैं लोगों के दरमियान बैठकर बड़ी खुशी से ये बताऊंगा कि मेरी वाइफ मेरे लिए बड़ी लकी है, तो सॉरी, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो सकता है, अनटाइमली ये वक्त गैर मतवक्के नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूं, कितना मुखलिस हूं, वो वक्त बता सकता है। इसलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। ये चाय तो ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना लाओ। वो उसका चेहरा देखती रही। कोई चीज उसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। अल्लाह ताला इंसान को जिंदगी में कहां कहां से तहफ्फुज देता है, कहां कहां से दीवारें लाकर खड़ा कर देता है इंसान के गिर्द। वो डॉक्टर सिप्ते अली के साय में रही थी तो उसे यकीन था कि उससे ज्यादा इज्जत, ज्यादा तहफ्फुज कोई उसे नहीं दे सकता। कम अज कम शादी जैसे रिश्ते से वो जिम्मेदारी के अलावा किसी चीज की तवक्को नहीं रखे हुए थी। और अब अगर वो उस शख्स के साथ वाबस्ता हुई थी तो वो तहफ्फुज के नए मफहूम से आगाह हो रही थी। इसकी जरूरत नहीं है इमामा, सालार ने उसके चेहरे पर फैलते आंसुओं को देखते हुए उसे नरमी से कहा। वो सर हिलाते और अपनी नाक रगड़ते हुए उठ गई। उसकी वाकई जरूरत नहीं थी। सालार ने इस मसले को कैसे हल किया था ये इमामा नहीं जानती थी। स्कूल की तामीर दोबारा कैसे शुरू हुई थी उसे यह भी नहीं पता था, लेकिन स्कूल दोबारा बन रहा था। सालार पहले से ज्यादा मसरूफ था और उसकी जिंदगी में आने वाला एक और तूफान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सालार ने दो टोक इनकार करते हुए कहा। लेकिन मुझे है, वो इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है, उसने बच्चों की तरह उसे बहलाया। कोई बात नहीं, दिखाने में क्या हर्ज है। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। तुम क्या जानना चाहते हो, अपने मुस्तकबिल के बारे में, मुझसे पूछ लो। सालार उसे इस पामिस्ट के पास ले जाने के मूड में नहीं था जो इस 5-स्टार होटल की लॉबी में था, जहां वो कुछ देर पहले खाना खाने के लिए आए थे। और खाने के बाद उसकी बीवी को पता नहीं वो पामिस्ट कहां से याद आ गया था। वेरी फनी, उसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरे का कैसे होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं है क्या? उसने मुस्कुराकर उसे जताया था। इसीलिए तो कह रही हूं, पामिस्ट के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। उसका इसरार बढ़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, बस काफी है, तुम्हें कल का मसाला क्यों हो रहा है? वो अब भी रजामंद नहीं हो रहा था। मुझे है कल का मसाला, वो कुछ चिल्लाकर बोली थी। उसे शायद ये तवक्को नहीं थी कि वो उसकी फरमाइश पर इसी तरह के रद्दे अमल का इजहार करेगा। कितने लोग हाथ दिखाकर जाते हैं इस पामिस्ट को, तुम्हें पता है मेरी कोलीग्स को इसने उनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कजन्स आई थीं इसके बारे में। वो अब उसे कायल करने के लिए मिसालें दे रही थी। भाभी आई थी उसके पास? उसने चौंक कर पूछा था। नहीं, वो उनकी तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो यकदम संजीदा हो गई थी। कब? अभी। वो बेख्तियार हंसा और उसने हथियार डालते हुए कहा, पामिस्ट को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है, और मैं तुमसे ऐसी किसी हिमाकत की तवक्को नहीं करता था। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए उसने कहा। नहीं, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है, तो जो कुछ मेरे बारे में बताएगा वो पामिस्ट, वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। इमामा अब उसे छेड़ रही थी। मसलन, सालार ने भवें उचकाते हुए उससे पूछा, मसलन अच्छी खुशगवार अस्तवाजी जिंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी तो होगी। जरूरी नहीं है, वो उसे तंग कर रहा था। हो सकता है शौहर के तौर पर मेरी जिंदगी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी। इमामा ने कंधे उचकाकर अपनी बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो, उसने साथ चलते हुए जैसे उसके रवैये की मुजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत, हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम लोगों पर, इज्जत की जिंदगी रास नहीं आती शायद इसलिए, वो चंद लम्हों बाद बुड़बुड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे? वो यकदम बुरा मान गई थी। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे, वो उसका बदलता मूड देखकर गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो, तुम अगर नाराज हो रही हो तो चलो फिर पामिस्ट के पास नहीं जाते। सालार ने बेहद सहूलत से उसे मौजू से हटाया था। नहीं, मैं कब नाराज हूं, वैसे ही पूछ रही थी। उसका मूड एक लम्हा में बदला था। वैसे तुम पूछोगी क्या पामिस्ट से? उसने बात को मजीद घुमाया। बड़ी चीजें हैं, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर तब तक वो पामिस्ट के पास पहुंच चुके थे। एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठा वो गैर दिलचस्पी से अपनी बीवी और पामिस्ट की इब्तदाई गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन उसे अपनी बीवी की दिलचस्पी और संजीदगी देखकर हैरत हुई थी। पामिस्ट अब उसका हाथ पकड़े अदसे की मदद से उसकी लकीरों का जायजा ले रहा था। फिर उसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया, लकीरों का इल्म ना तो हतमी होता है ना ही इल्हामी, हम सिर्फ वो ही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल मुकद्दर बनाता, संवारता और बिगाड़ता सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका, फिर उसने जैसे हैरानी से कुछ देखते हुए बेख्तियार उसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे उसके शौहर को, जो उस वक्त अपने ब्लैकबेरी पर कुछ मैसेजेस देखने में मसरूफ था। बड़ी हैरानी की बात है, पामिस्ट ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। क्या? उसने कुछ बेताब होकर पामिस्ट से पूछा, आपकी ये पहली शादी है? ब्लैकबेरी पर अपने मैसेज चेक करते करते उसने चौंक कर पामिस्ट को देखा। उसका ख्याल था ये सवाल उसके लिए था, लेकिन पामिस्ट की मुखातिब उसकी बीवी थी। हाँ, इमामा ने कुछ हैरान होकर पहले पामिस्ट और फिर उसे देखकर कहा। ओह अच्छा, पामिस्ट फिर किसी गौर खोज में मशगूल हो गया था। आपके हाथ पर दूसरी शादी की लकीर है, एक मजबूत लकीर, एक खुशगवार कामयाब दूसरी शादी, पामिस्ट ने उसका हाथ देखते हुए जैसे हतमी अंदाज में कहा। इमामा का रंग उड़ गया था, उसने गर्दन मोड़कर अपने शौहर को देखा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित था। आपको यकीन है? इमामा को लगा जैसे पामिस्ट ने कुछ गलत पढ़ा था उसके हाथ पर। जहां तक मेरा इल्म है, इसके मुताबिक तो आपके हाथ पर शादी की दो लकीरें हैं और दूसरी लकीर पहली लकीर की निस्बत ज्यादा वाज़ह है। पामिस्ट अब भी उसके हाथ पर नजरें जमाए हुए था। सालार ने इमामा के किसी अगले सवाल से पहले जेब से वॉलेट और वॉलेट से एक करेंसी नोट निकालकर पामिस्ट के सामने मेज पर रखा, फिर बड़ी शायस्तगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसे उठकर वहां से चलते देखकर इमामा ना चाहने के बावजूद उठकर उसके पीछे आई थी। मुझे अभी और बहुत कुछ पूछना था उससे, उसने खफगी से सालार के बराबर में आते हुए कहा। मसलन? सालार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। वो फौरी तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके। उसने मुझे और परेशान कर दिया है, इमामा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो पार्किंग में आ गए तो उसने गाड़ी में बैठते ही सालार से कहा, इट वॉज योर चॉइस, ये तुम्हारा इंतखाब था, सालार ने कुछ बेरुखी से कहा था। उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल देखने के लिए। सालार, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इमामा ने उसकी बात के जवाब में यकदम कहा। ये नतीजा अगर तुमने पामिस्ट की पेशेंट गोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है, सालार को गुस्सा आया था। इस पर इमामा कुछ खफीफ सी हो गई। ऐसे ही पूछा है मैंने, तुम्हें पहले कम वहम थे मेरे बारे में कि किसी पामिस्ट की मदद की जरूरत पड़ती? सालार की खफगी कम नहीं हुई थी। दूसरी शादी तो वो तुम्हारी प्रिडिक्ट कर रहा था, एक कामयाब खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो, सालार ने इस बार चुपते हुए अंदाज में कहा था। उनकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, इमामा ने सालार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊं और इसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो, सालार को एकदम उसे चिढ़ाने की सूझी। इमामा ने इस बार उसे खफगी से देखा। तुम बेवकूफी की बातें मत करो, वैसे तुम कर लेना शादी अगर मैं मर गया तो, अकेली मत रहना, इमामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूं, तुम कुछ और बात करना शुरू हो जाते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सालार के मशवरे ने उसे डिस्टर्ब किया था और ये उसके जुमले की बेरबती में झलका था। सालार खामोश हुआ, इमामा भी खामोश थी। तुम असल में ये चाहते हो कि मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, वो कुछ लम्हों के बाद यकदम बोली थी। वो उसकी जहानत पर अश अश कर उठा था। तो क्या मैं ना करूं? सालार ने जानबूझकर उसे बड़ी संजीदगी से छेड़ा। उसने जवाब देने की बजाय उसे बड़े परेशान अंदाज में देखा। मुझे पामिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहिए था, वो पछताई थी। तुम मुझसे सूद के बारे में सवाल करते हो और खुद ये यकीन रखती हो कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की किस्मत का हाल पता हो सकता है। वो साफगो था और हमेशा से था, मगर उसकी साफगोई ने इमामा को कभी इस तरह शर्मिंदा नहीं किया था जिस तरह अब किया था। घड़ों पानी पड़ने का मतलब उसे अब समझ आया था। इंसान हूं, फरिश्ता तो नहीं हूं मैं, उसने मध्यम आवाज में कहा था। जानता हूं, और तुम्हें फरिश्ता कभी समझा भी नहीं मैंने। मार्जिन ऑफ एरर देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम मुझे नहीं देती। वो उसे देख कर रह गई। वो ठीक कह रहा था, वो बहुत कम कोई गलत बात करता था। इमामा को ये एतराफ था, जिंदगी और किस्मत का पता अगर जायचों, पांसों, आदाद, लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अकल ना देता, बस सिर्फ यही चीजें देकर दुनिया में उतार देता। वो गाड़ी चलाते हुए कह रहा था और वो शर्मिंदगी से सुन रही थी। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे, बेहतर है गैब गैब ही रहे। अल्लाह से उसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज्यादा बेहतर है। वो बोल ही नहीं सकी थी। सालार बाज दफा उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ता था। ये यकीन और ये एतमाद तो उसका असासा था, ये उसके पास कैसे चला गया था। उस रात इमामा को पहली बार ये बेचैनी हुई थी। वो साथी थे, रकीब नहीं थे, पर उसे चंद लम्हों के लिए सालार से रकाबत हुई थी। वो ईमान के दर्जों में उससे बहुत पीछे था। वो उसे पीछे कैसे छोड़ने लगा था। वो सालार के साथ खाने काबा के सेहन में बैठी हुई थी। सालार उसके दाएं जानिब था और वहां उनकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहां थे और अपनी शादी के 7 माह बाद वहां उमरा के लिए आए थे। एहराम में मलबूस सालार के बरहना कंधे को देखते हुए इमामा को एक लंबे अरसे के बाद वो ख्वाब याद आया था। सालार के दाएं कंधे पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसके बाएं कंधे की पुश्त पर अब उस डिनर नाइफ का निशान था जो हाशिम मुबीन ने उसे मारा था। तुमने पहले कभी मुझे इस ख्वाब के बारे में नहीं बताया, वो इमामा के मुंह से इस ख्वाब का सुनकर शॉक्ड रह गया था। कब देखा था तुमने ये ख्वाब? इमामा को तारीख, महीना, दिन, वक्त सब याद था, कैसे भूल सकता था। वो इस दिन जलाल से मिली भी थी इतने सालों के लाहासिल इंतजार के बाद। सालार गुंग था। वो वही रात थी जब वो यहां इमामा के लिए गिड़गड़ा रहा था इस आस में कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाने बगैर कि उसकी दुआ कबूल हो रही थी। उस दिन मैं यहां था, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए इमामा को बताया था। इस बार वो साकित हुई। उमरा के लिए? सालार ने सर हिलाया। वो सर झुकाए अपने होंठ काटता रहा। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ उसे देखती रही। उस दिन तुम यहां ना होते तो शायद, वो एक लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ कहना चाहा था मगर बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। शायद, सालार ने सर उठाकर उसे देखा था, यूं जैसे चाहता था वो बात मुकम्मल करती। वो कैसे करती? उससे कहती, ये कह देती कि वो उस दिन यहां ना होता तो शायद जलाल उससे ऐसी सर्द महरी, ऐसी बेरुखी ना बरतता। वो सब कुछ ना कहता जो उसने कहा था। वो उसके और जलाल के बीच में अल्लाह को ले आया था और उसके लिए सालार को यकीनन अल्लाह ने ही चुना था। एक गहरा सांस लेकर उसने सब कुछ जैसे सर से झटकने की कोशिश की थी, लेकिन सालार की बातें उसकी समातों से चिपक गई थी। इतने सालों में जब भी यहां आया, तुम्हारे लिए भी उमरा किया था मैंने, वो बड़े सादा लहजे में इमामा को बता रहा था, उसे रुला रहा था। तुम्हारी तरफ से हर साल ईद पर कुर्बानी भी करता रहा हूं मैं। क्यों? इमामा ने भराई हुई आवाज में उससे पूछा था। तुम मनकूहा थी मेरी, दूर थी लेकिन मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। वो रोती गई थी। उसके लिए सब कुछ इसी शख्स ने करना था क्या? उसे सालार के हाफिज़े कुरान होने का पता भी उसी वक्त चला था। वो जलाल की नात सुनकर मशहूर हो जाती थी और अब वहां हर्म में सालार की किरत सुनकर गुंग थी। ऐसी किरत कहां से सीखी तुमने? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। जब कुरान पाक हिफ्ज किया तब, अब तो पुरानी बात हो गई है, उसने बड़े सादा लहजे में कहा। इमामा को चंद लम्हों के लिए जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुमने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है? डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया। वो शौक थी। तुमने कभी नहीं बताया इतने महीनों में? पता नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया। डॉक्टर साहब के पास आने वाले ज्यादातर लोग हफाज ही हैं। मेरा हाफिज़े कुरान होना उनके लिए कोई अनोखी बात नहीं होगी, वो कह रहा था। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? आंसुओं का एक रेला आया था इमामा की आंखों में। जलाल को पेडिस्टल पर बिठाए रखने की एक वजह उसका हाफिज़े कुरान होना भी था। वो आज वो जिसकी बीवी थी, हाफिज़े कुरान वो भी था। बहुत सी नेमतें पता नहीं अल्लाह किस नेकी के एवज अता करता है, समझ में नहीं आता वो दिलों में कैसे रहता है। वो सुनती आई थी, वो दिलों को कैसे बूझ लेता है, वो देख रही थी। बस सब कुछ कुन था अल्लाह के लिए, बस ऐसे, इतना ही सहल आसान, पलक झपकने से पहले, सांस आने से पहले। अल्लाह सामने होता तो वो उसके कदमों में गिरकर रोती। बहुत कुछ मांगा था पर ये तो सिर्फ चाहा था। वो इतना कुछ दे रहा था, उसका दिल चाहा था वो एक बार फिर भागकर हरम में चली जाए जहां से कुछ देर पहले आई थी। रो क्यों रही हो? वो उसके आंसुओं की वजह नहीं जान पाया। वो रोते रोते हंसी। बहुत खुश हूं इसलिए, तुम्हारी एहसानमंद हूं इसलिए, नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पा रही इसलिए। वो रोती हंसती और कहती जा रही थी, बेवकूफ हो इसलिए, सालार ने जैसे खुलासा किया। हां वो भी हूं, उसने अपने आंसू पोंछते हुए शायद पहली बार सालार की जुबान से अपने लिए बेवकूफ का लफ्ज सुनकर खफगी का इजहार नहीं किया था। एक लम्हा के लिए इमामा ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर हरम के सहन में खाना काबा के बिल्कुल सामने बराबर में बैठे सालार को देखा, जो बहुत खुश लहानी से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वबी आला इरबी कुमा तुकसिबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम जो कुछ कर रही हो इमामा, तुम इस पर बहुत पछताओगी, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। 9 साल पहले हाशिम मुबीन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा था, सारी दुनिया की जिल्लत, रुसवाई, बदनामी और भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उन्होंने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था, तुम्हारी जैसी लड़कियों को अल्लाह जलीलो ख्वार करता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। इमामा की आंखें नम हो गईं। एक वक्त आएगा जब तुम दोबारा हमारी तरफ लौटोगी, मिन्नत समाजत करोगी, गिड़गड़ाओगी, तब हम तुम्हें धुतकार देंगे, तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफी मांगोगी, कहोगी कि मैं गलत थी। इमामा अश्कबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा, उसने जेरे लब कहा, कि जिंदगी में एक बार मैं आपके सामने आऊं और आपको बता दूं कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई जिल्लत, कोई रुसवाई नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मुझे दुनिया के लिए तमाशा नहीं बनाया, न दुनिया में बनाया है, ना ही आखिरत में किसी रुसवाई का सामना करूंगी। और मैं आज अगर यहां मौजूद हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर हूं, और यहां बैठकर मैं एक बार फिर इकरार करती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई पैगंबर आया है ना ही कभी आएगा। मैं इकरार करती हूं कि वो ही पीरे कामिल हैं। मैं इकरार करती हूं कि उनसे कामिल तरीन इंसान कोई दूसरा नहीं, उनकी नस्ल में भी कोई उनके बराबर आया ही नहीं, ना ही कभी आएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि वो मुझे मेरी आने वाली जिंदगी में भी कभी अपने साथ शिर्क करवाए, ना ही मुझे अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को ला खड़ा करने की जुर्रत हो। मैं दुआ करती हूं कि ऐ अल्लाह, जिंदगी भर मुझे सीधे रास्ते पर रखे, बेशक मैं उसकी किसी नेमत को नहीं झुठला सकती। सालार ने सूरह रहमान की तिलावत खत्म कर ली थी। चंद लम्हों के लिए वो रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते हुए रुक गया। इमामा आंखें बंद किए दोनों हाथ फैलाए दुआ कर रही थी। वो उसकी दुआ खत्म होने के इंतजार में बैठ गया। इमामा ने दुआ खत्म की, सालार ने एक बार फिर उठना चाहा और उठ नहीं पाया। इमामा ने बहुत नरमी से उसका दायां हाथ पकड़ लिया था। वो हैरत से उसे देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? रात के पिछले पहर नरमी से उसका हाथ थामे वो भीगी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रही थी, मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले जब मैंने जलाल से मोहब्बत की तो पूरे सिद्क के साथ की थी। दुआएं, वजीफे, मन्नतें, क्या था जो मैंने नहीं किया? मगर वो मुझे नहीं मिला। वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। सालार का हाथ उसके हाथ की नर्म गिरफ्त में था, उसके घुटने पर धरा था। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज्यादा सिद्क था। सालार ने अपने हाथ को देखा, उसकी थोड़ी से टपकने वाले आंसू उसके हाथ पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा इमामा के चेहरे को देखा। मुझे अब लगता है कि मुझे अल्लाह ने बड़े प्यार से बनाया है। वो मुझे ऐसे किसी शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी कदर ना करता, ना कदरी करता, मुझे जाया करता। और जलाल वो मेरे साथ यही सब करता, वो मेरी कदर कभी ना करता। 9 साल में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर और बाहर दिखा दिया। और फिर उसने मुझे सालार सिकंदर को सौंपा, क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहां ले आता? तुमने ठीक कहा था, तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। वो बेहिसो हरकत सा उसे देख रहा था। उसने इस एतराफ, इस इजहार के लिए कौन सी जगह चुनी थी? वो अब उसके हाथ को नरमी और एहतराम से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं ये नहीं जानती, दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। मगर मैं जितनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तुम्हारी वफादार और फरमा बरदार होंगी, ये मेरे इख्तियार में है। मैं जिंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, मैं बुरे दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था उसी नरमी से छोड़ दिया। वो अब सर झुकाए दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी। सालार कुछ कहे बगैर उठकर खड़ा हो गया। वो खाना काबा के दरवाजे को देख रहा था। बिलाशुबा उसे जमीन पर उतारे जाने वाली साले और बेहतरीन औरतों में से एक दी गई थी, वो औरत जिसके लिए सालार ने हर वक्त और हर जगह दुआ की थी। क्या सालार सिकंदर के लिए नेमतों की कोई हद रह गई थी? और अब जब वो औरत उसके साथ थी तो उसे एहसास हो रहा था कि वो कैसी भारी जिम्मेदारी अपने लिए ले बैठा था। उसे उस औरत का कफील बना दिया गया था जो नेकी और पारसाई में उससे कहीं आगे थी। इमामा उठ खड़ी हुई। सालार ने कुछ कहे बगैर उसका हाथ थाम कर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसे इस औरत की हिफाजत सौंप दी गई थी जिसने अपने इख्तियार की जिंदगी को उसकी तरह किसी आलाइश और गलाजत में नहीं डुबोया, जिसने अपनी तमाम जस्मानी और जज्बाती कमजोरियों के बावजूद अपनी रूह और जिस्म को उसकी तरह नफ्स की भेंट नहीं चढ़ाया। उसका हाथ थामे कदम बढ़ाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार पारसाई और तकवा का मतलब समझ में आ रहा था। वो अपनी पूरी जिंदगी को जैसे फिल्म की किसी स्क्रीन पर चलता देख रहा था और उसे बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। सालार, तुमसे एक चीज मांगू, इमामा ने जैसे उसकी सोच के तसलसल को रोका था। वो उस वक्त हर्म के सहन में बाहर निकलने ही वाले थे। सालार ने रुककर उसका चेहरा देखा। वो जानता था वो उससे क्या मांगने वाली थी। तुम एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पढ़ो। सालार को अंदाजा नहीं था वो उससे ये मुतालबा करने वाली थी। वो हैरान हुआ था। आखिरी खुतबा? वो बुड़बुड़ाया। हां, वही खुतबा जो उन्होंने जबले रहमत के दामन में दिया था, उस पहाड़ पर जिस पर 40 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा बिछड़ कर मिले थे और बख्शे गए थे। इमामा ने मधम आवाज में कहा। एक धमाके के साथ सालार को पता चल गया था वो उसे आखिरी खुतबा क्यों पढ़वाना चाहती थी। उसने सालार से आखिरी खुतबा के बारे में एक दिन पहले भी पूछा था, तब वो जबले रहमत पर खड़े थे। तुम्हें आखिरी खुतबा क्यों याद आ गया? सालार ने कुछ हैरान होकर उसे देखा। वो दोनों भी कुछ देर पहले जबले रहमत पर नवाफिल अदा करके फारिग हुए थे। यहीं पर आखिरी हज के इज्तमा से खिताब किया था ना उन्होंने। वो जबले रहमत की चोटी के दामन को देख रही थी। हां, सालार ने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए नीचे झांका। उन दोनों के कपड़े अब हवा से फड़फड़ा रहे थे। वो दोपहर का वक्त था। तेज धूप और लू जैसी हवा के थपेड़ों में वो उससे खून जमा देने वाले सवाल करने वाली थी। तुम्हें उनका खुतबा याद है? इमामा ने उससे पूछा। सारा तो नहीं, सालार याद करने की कोशिश करते हुए अटका। बस चंद अहकामात याद होंगे, उसने बात मुकम्मल की थी। जैसे, इमामा ने मधम आवाज में दिल गुर्दा निकाल देने वाली बेरहमी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। सालार उसकी नजरों से नजरें हटा नहीं सका। वो बड़ी नाजुक जगह पर खड़ा करके उससे उसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल पूछ रही थी और सवाल का जवाब उनके दरमियान आने वाली खामोशी के वक्फे में भी था। मुझे पूरा याद है और आज यहां खड़ी हूं तो और भी याद आ रहा है। मैं सोच रही हूं आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा यहीं क्यों दिया था, इस पहाड़ के दामन में खड़े होकर जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम 40 साल के बाद आपस में मिलाए और बख्शे गए। वो अब कुछ सोचने वाले अंदाज में बोल रही थी, शायद इसलिए क्योंकि दुनिया का आगाज उन्हीं दो इंसानों से हुआ और दीन मुकम्मल होने का ऐलान भी इसी मैदान में हुआ और इसी मैदान में एक दिन दुनिया का खात्मा होगा। सालार लुकमा दिए बगैर नहीं रह सका। इमामा हंस पड़ी थी। तुम हंसी क्यों? सालार उलझा। तुम तो कह रहे थे कि तुमको वो चंद अहकामात भी याद नहीं, अब ये कैसे याद आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में दीन मुकम्मल होने का ऐलान किया था? सालार लाजवाब हुआ था। इससे पहले कि वो इमामा को कोई तौजीह ढूंढ कर पेश करता, उसने इसी पुरसोच अंदाज में उससे कहा, मुझे लगता है वो आखिरी खुतबा दुनिया के हर इंसान के लिए था, हम सब के लिए, आज के आदम और हवा के लिए। अगर वो सारे अहकामात जो उस आखिरी खुतबा का हिस्सा थे हम सब ने अपनाए होते या अपना लें तो दुनिया इस बेसकूनी और बिगाड़ का शिकार ना होती जहां हम आज खड़े हैं। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए आखिरी वसीयत थी तो हम बहुत बदकिस्मत हैं कि उनकी सुन्नत तो एक तरफ, उनकी वसीयत तक हमें याद नहीं। अमल करना तो बहुत दूर की बात है। वो कुछ जज्बाती अंदाज में बोलती गई थी और सालार को पता था ये गुफ्तगू कहां जा रही थी। वो औरत 950 साल पहले भी उसके पैरों के नीचे से जमीन निकाल सकती थी और तब भी निकाल रही थी। तुमको सूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहकामात पता है ना, उस आखिरी खुतबे के। वो तलवार उसकी गर्दन पर आ गिरी थी जिससे वो अब तक बचने की कोशिश करता आया था। वो किस जगह पर खड़ी, उससे क्या पूछ रही थी? ऐसी नदामत तो कभी खाना काबा में अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसे नहीं हुई थी जितनी उस वक्त जबले रहमत पर उस जगह खड़े होकर उसे हुई थी, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में अहकामात दिए थे। सालार को चंद लम्हों के लिए लगा जैसे जबले रहमत पर पड़े हर पत्थर ने उस पर लानत भेजी थी। पसीना माथे पर नहीं, पैरों के तलवों तक आया था। उसे लगा था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था और बस वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनकी नजरों में उसके लिए मलामत नहीं अफसोस था। फिर वो वहां ठहर नहीं सका, सर झुकाए तेज कदमों से इमामा का इंतजार किए बगैर जबले रहमत से उतरता चला गया। वो रहमत का हकदार नहीं था तो जबले रहमत पर कैसे खड़ा हो पाता? उसे नीचे उतरकर महसूस हुआ था और आज इमामा ने वो सवाल हरम में कर दिया था। सालार ने उससे इस बार ये नहीं पूछा था कि वो उससे क्या मांगेगी। उसने उसके बिलमुकाबिल खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर हरम के सहन से निकलने से पहले इमामा से कहा था, मैं सूद जब भी छोड़ूंगा तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ूंगा। इमामा ने उसके ऐलान को सुना और फिर बड़ी ठंडी आवाज में कहा, तो फिर उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ दो। सालार हिल नहीं सका। ये औरत उसकी जिंदगी में पता नहीं किस लिए आई या लाई गई थी। उसको इकोनॉमिक्स और हिसाब के हर सवाल का जवाब आता था सिवाय इस एक जवाब के, तुम तो हाफिज कुरान हो सालार, फिर भी इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहे हो कुरान पाक और अल्लाह के अहकामात की। इमामा ने उसके साथ हरम से बाहर जाते हुए कहा, तुम जानती हो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करवा रहा हूं लोगों को। और इमामा ने सालार की बात काट दी, तुमको यकीन है कि तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो भी कर रहे हो इसमें सूद का जरा तक शामिल नहीं है। सालार कुछ देर बोल नहीं सका, फिर उसने कहा, तुम बैंकिंग के बारे में मेरा मौकफ जानती हो, चलो मैं छोड़ भी देता हूं ये। बिल्कुल, हर मुस्लिम छोड़ दे बैंकों को, इसके बाद क्या होगा, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। उसने बड़ी संजीदगी से उससे कहा था, अभी तो हम हराम काम ही सही मगर इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को समझ रहे हैं, एक वक्त आएगा जब हम एक मतवाजी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ले आएंगे और वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से नहीं आएगा, और ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इमामा ने उसकी बात काट दी, कम से कम मेरी और तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? सूद जिन लोगों के खून में रिस्क बनकर दौड़ने लग जाए वो सूद को मिटाने का कभी नहीं सोचेंगे। सालार को एक लम्हा के लिए लगा इमामा ने उसके चेहरे पर तमांचा दे मारा है। बात कड़वी थी, बात सच्ची थी, थूक सकता था पर कड़वाहट जायल नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम अगर चीजों को बदल नहीं सकते तो अपनी काबिलियत एक गलत काम को अरूज पर पहुंचाने के लिए मत इस्तेमाल करो। वो उसी इमामा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था और आज वो बीवी बनकर वैसी ही बातें दोहरा रही थी तो सालार को खफगी हो रही थी, या शायद वो शर्मिंदगी थी जो उसे इमामा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहने दे रही थी। उसने क्या क्या नहीं किया था उस औरत को मती और फरमाबरदार करने के लिए। वो अभी कुछ देर पहले हरम में वो उससे अपनी मोहब्बत और इताअत का ऐलान भी कर रही थी, अपनी गैर मशरूत اور دائمی محبت اور وابستگی کا، اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی۔ جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امامہ ہاشم کی زبان سے۔ سالار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا، بونا نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان نہ دکھتا۔ میں آخری خطبہ پڑھوں گا، کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا تھا۔ مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا۔ تمہیں زبانی یاد ہے؟ سالار نے بغیر حیران ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اتنی بار پڑا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں، وہ اب جیسے کچھ یاد کر رہی تھی۔ سالار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، آدم، مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبہ کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا، جو کئی سو سال پہلے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور بے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کا علدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے، تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں जैसे आज का ये दिन यानी अरफा का दिन, ये महीना यानी जिलहज्जा और ये शहर मक्का। खबरदार, जमाना जाहिलियत की हर रस्म और तरीका आज मेरे कदमों के नीचे है और जाहिलियत के खून माफ कर दिए गए हैं, और पहला खून जो मैं अपने खूनों से माफ करता हूं वो इब्ने रबिया हारिस का खून है। देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि फिर एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। ऐ लोगो, ना तो मेरे बाद कोई नया पैगंबर या नबी आएगा, ना तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और शैतान से खबरदार रहो। वो इस बात से मायूस हो चुका है कि इस जमीन पर उसकी परस्तिश की जाएगी, लेकिन वो इस बात पर राजी है कि तुम्हारे दरमियान फितना व फसाद पैदा करता रहे। इसलिए तुम उससे अपने दीनों ईमान की हिफाजत करो। जान जाओ कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं। किसी के लिए यह जायज नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय उसके जिसे उसका भाई अपनी रजामंदी और खुशी से दे, और अपने नफ्स पर और दूसरे पर ज्यादती ना करो। तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो, और आदम मट्टी से बने थे। किसी अरब को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। बर्तरी अगर है तो सिर्फ तकवा को। और अपने गुलामों का ख्याल रखो, और जो तुम खाओ उसमें से उनको खिलाओ, और जो तुम पहनो उसी में से उनको पहनाओ। और अगर वो ऐसी खता करें जो तुम माफ ना करना चाहो तो उन्हें फरोख्त कर दो, लेकिन कोई सजा ना दो। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करो, पांच वक्त की नमाज कायम करो, रमजान के रोजे रखो, अपने माल की जकात खुशी से अदा करो, अपने हाकिम की इताअत करो चाहे वो एक नाक कटा हबशी ही क्यों ना हो, और इसी तरह अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ।